नमस्कार, आज विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प विषय ऊष्मा यानी हीट को समझने की कोशिश करते हैं।
नमस्कार। हाँ, हीट ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
बिल्कुल, हमारे पास स्रोत के तौर पर कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश हैं। हमारा इरादा है कि इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसानी से समझा जाए, बिल्कुल बातचीत वाले अंदाज में।
हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इसे किताबी न रखकर आसानी से समझें।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऊष्मा है क्या, तापमान कैसे मापते हैं और सबसे जरूरी, ये गर्मी एक जगह से दूसरी जगह अपना रास्ता कैसे बना लेती है। कभी सोचा है धूप में रखी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से ज्यादा गर्म क्यों लगती है? चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं।
बिल्कुल, और ये बेंच वाला सवाल तो सीधे हमारे एक मुख्य मुद्दे से जुड़ता है, मतलब कैसे अलग अलग पदार्थ ऊष्मा के साथ अलग व्यवहार करते हैं।
अच्छा,
हम ऊष्मा और तापमान के बीच के बारीक फर्क को जानेंगे और फिर ऊष्मा के सफर के 3 तरीकों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझेंगे।
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हाँ ये नाम सुने हैं।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये रोज हमारी जिंदगी में काम आती हैं।
सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म और ठंडे के एहसास की। हम रोज महसूस करते हैं चाय गर्म है, बर्फ ठंडी है, लेकिन क्या सिर्फ छूकर हम पक्के तौर पर बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है?
नहीं, असल में नहीं बता सकते।
जैसा हमने पढ़ा, हमारा ये अंदाजा कभी कभी धोखा दे सकता है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी त्वचा हमें बता सकती है कि कोई चीज तुलनात्मक रूप से गर्म है या ठंडी, पर ये कोई सटीक माप नहीं है।
मतलब पक्का नहीं कह सकते।
हाँ, जैसे वो एक प्रयोग है ना, अगर हम अपना एक हाथ ठंडे पानी में और दूसरा गर्म पानी में डालकर फिर दोनों हाथ सामान्य पानी में डालें,
हाँ,
तो ठंडे पानी वाले हाथ को वो सामान्य पानी गर्म लगेगा और गर्म पानी वाले हाथ को ठंडा।
अरे वाह, तो मतलब हमारा हाथ भरोसेमंद नहीं है इस मामले में।
बिल्कुल, इसीलिए हमें एक विश्वसनीय तरीके की जरूरत पड़ती है। यही ऊष्मा और तापमान की वैज्ञानिक समझ काम आती है।
तो फिर ऊष्मा और तापमान में क्या फर्क है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं ना?
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, ऊष्मा हीट असल में ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी।
अच्छा, ऊर्जा।
और ये ऊर्जा हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह या वस्तु से कम तापमान वाली जगह या वस्तु की तरफ बहती है, हमेशा।
ओके, ज्यादा से कम की तरफ।
दूसरी तरफ तापमान, टेम्परेचर, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का एक निश्चित माप है, एक डिग्री है कि वो कितनी गर्म या ठंडी है।
अच्छा, ये एक लेवल है।
हाँ, एक लेवल। इसे मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जैसी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान में ऐसा यूनिट केल्विन है। खैर,
हाँ, सेल्सियस तो हम रोज सुनते हैं।
तो आसान भाषा में ऊष्मा बहने वाली ऊर्जा है और तापमान उसका स्तर बताता है।
समझ गई, ऊष्मा ऊर्जा है जो बहती है और तापमान उस गर्माहट का लेवल है। तो इस लेवल को यानी तापमान को भरोसेमंद तरीके से कैसे मापते हैं? जाहिर है, थर्मोमीटर से।
एकदम सही, थर्मोमीटर ही वो उपकरण है। ज्यादातर पारंपरिक थर्मोमीटर्स इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि तरल पदार्थ
जैसे पारा,
हाँ जैसे पारा यानी मर्क्यूरी, या आजकल अल्कोहल वाले भी आते हैं, गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ,
थर्मोमीटर में एक पतली कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें ये तरल भरा होता है। जब बल्ब किसी गर्म चीज के संपर्क में आता है तो तरल फैलकर नली में ऊपर चढ़ता है, ठंडा होने पर सिकुड़कर नीचे आ जाता है।
और नली पर निशान बने होते हैं?
हाँ, नली पर बने निशानों से हम तापमान पढ़ लेते हैं।
और जैसा हमने पढ़ा, ये थर्मोमीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। खासकर दो मुख्य प्रकारों का जिक्र है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। इनमें क्या खास अंतर है?
हाँ, ये उनके उपयोग पर निर्भर करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसा नाम से ही जाहिर है, क्लिनिक में या घर पर मानव शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है।
बुखार नापने वाला?
हाँ, वही। इसकी रेंज सीमित होती है, आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः इसी दायरे में रहता है।
ठीक है।
इसकी एक खास पहचान है, बल्ब के पास नली में एक छोटा सा घुमाव या संकुचन होता है जिसे किंक कहते हैं।
अच्छा, ये किंक, ये क्यों होता है, इसका क्या काम है?
ये बहुत काम का है। जब हम शरीर का तापमान मापकर थर्मोमीटर मुंह से या बगल से बाहर निकालते हैं तो ये किंक पारे को फौरन नीचे गिरने से रोकता है।
अच्छा,
ताकि हम आराम से देख सकें रीडिंग।
बिल्कुल।
इससे हमें तापमान आराम से पढ़ने का समय मिल जाता है।
समझ गए।
और दूसरा प्रकार लैबोरेटरी थर्मामीटर।
लैबोरेटरी थर्मामीटर प्रयोगशालाओं में अलग अलग चीजों या प्रयोगों का तापमान मापने के काम आता है।
लैब में मतलब? हाँ, क्योंकि ये प्रयोगशाला में बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीजों का तापमान मापना पड़ सकता है, इसलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक।
काफी ज्यादा रेंज है।
हाँ, और इसमें वो किंक नहीं होता, क्योंकि इसे पदार्थ में डूबे रहने के दौरान ही पढ़ा जाता है, बाहर निकाल कर नहीं।
अच्छा, उसे चीज के अंदर रखकर ही पढ़ना होता है।
हाँ, एक और बात, आजकल मर्क्यूरी की विषाक्तता, मतलब वो जहरीला होता ना पारा,
हाँ सुना है,
तो उसकी वजह से डिजिटल थर्मोमीटर्स का चलन बढ़ गया है। वो इस्तेमाल में आसान भी है और सुरक्षित भी।
हाँ, डिजिटल थर्मोमीटर्स तो अब काफी आम हो गए हैं, घर घर में होते हैं।
अच्छा, इनको इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतने की बात भी कही गई है, संक्षेप में वो क्या है?
हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे इस्तेमाल से पहले और बाद में थर्मामीटर को धोना चाहिए, अच्छा हो अगर किसी एंटीसेप्टिक घोल से धोएं।
ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या नहीं ये देख लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो हल्के झटके देकर नीचे लाएं।
हाँ, वो झटका देना पड़ता है।
पढ़ते समय थर्मोमीटर को बल्ब की तरफ से न पकड़ें और उसे अपनी आंखों के सामने सीधा रखकर पढ़ें।
ओके।
लैबोरेटरी थर्मोमीटर को भी सीधा रखना चाहिए और उसका बल्ब पूरी तरह उस पदार्थ में डूबा हो जिसका तापमान लेना है, पर बल्ब बर्तन की सतह को न छुए।
अच्छा, बर्तन से टच नहीं होना चाहिए।
हाँ, और हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए, वो टूट सकता है, उसकी रेंज उतनी नहीं होती।
सही बात है। ये तो हुई तापमान मापने की बात, अब उस सवाल पर आते हैं कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। पहला तरीका बताया गया है कंडक्शन। इसका क्या मतलब है? वो चम्मच वाला उदाहरण याद आ रहा है।
हाँ,
गर्म चाय में रखो तो हैंडल भी गर्म हो जाता है।
बिल्कुल, कंडक्शन ऊष्मा के स्थानांतरण का वो तरीका है जो मुख्य रूप से ठोस पदार्थों यानी सॉलिड्स में होता है।
ठोस में?
इसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में बिना कणों के अपनी जगह छोड़े सीधे संपर्क यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा आगे बढ़ती है, जैसे आपने चम्मच का उदाहरण दिया। या अगर आप धातु की एक रॉड का एक सिरा गर्म करें तो धीरे धीरे गर्मी दूसरे सिरे तक पहुंचाती है।
हाँ, होता है ऐसा।
पाठ्य पुस्तक में एक प्रयोग का जिक्र है जिसमें धातु की रॉड पर मोम से पिन छिपकाए जाते हैं और एक सिरे को गर्म करते हैं। जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती है मोम पिघलता जाता है और पिन गिरते जाते हैं।
अच्छा, वो दिखाता है कि गर्मी आगे बढ़ रही है।
हाँ, ये कंडक्शन का सीधा प्रदर्शन है।
अच्छा, तो मतलब कण खुद चलकर नहीं जाते, बस अपनी गर्मी पड़ोसी को पास कर देते हैं एक तरह से।
बिल्कुल, बस बगल वाले को धक्का दे दिया समझ लीजिए। और क्या सभी ठोस पदार्थ एक जैसे ही गर्मी पास करते हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जैसे लकड़ी और लोहा अलग अलग गर्म होते हैं।
हाँ, यहीं पर पदार्थों का वर्गीकरण आता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।
कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।
जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से और तेजी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं।
जैसे धातुएं?
हाँ, ज्यादातर धातुएं जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं। इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं, ताकि चूल्हे की गर्मी जल्दी से बर्तन से होते हुए खाने तक पहुंच सके।
सही है। और वो पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, जैसे बर्तनों के हैंडल, वो तो गर्म नहीं होते।
उन्हें ऊष्मा का कुचालक यानी पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं।
इंसुलेटर्स।
लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच, रबर, एस्बेस्टस, हवा, पानी। पानी भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। ये सब इंसुलेटर्स के उदाहरण हैं।
हवा भी?
हाँ, हवा भी, और इनका भी बहुत महत्व है। जैसे आपने कहा, बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के बनते हैं ताकि हम गर्म बर्तन को बिना जले पकड़ सकें।
हाँ, नहीं तो हाथ जल जाए।
खुद एक इंसुलेटर है और उसके रेशों के बीच हवा फंस जाती है। हवा भी ऊष्मा की बहुत अच्छी इंसुलेटर है।
अच्छा, तो ऊन और हवा दोनों मिलकर गर्मी रोकते हैं।
हाँ, तो ये दोनों मिलकर हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं और हमें गर्म रखते हैं।
दिलचस्प है। तो कंडक्शन ठोस चीजों में ज्यादा होता है, पर तरल पदार्थ जैसे पानी या गैसें जैसे हवा, ये कैसे गर्म होते हैं? क्या इनमें भी कंडक्शन होता है?
कंडक्शन तरल और गैस में बहुत कम होता है, क्योंकि उनके कण दूर दूर होते हैं, उनमें उतना प्रभावी नहीं है ये।
तो फिर?
इनमें ऊष्मा फैलने का मुख्य तरीका है कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन।
यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। कन्वेक्शन में पदार्थ के कण खुद चलकर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
कण खुद चलकर जाते हैं?
कंडक्शन में तो नहीं चल रहे थे, ये कैसे होता है?
जब किसी तरल या गैस को नीचे से गर्म किया जाता है तो नीचे वाले कण गर्म होकर फैलते हैं और हल्के हो जाते हैं।
हल्के हो जाते हैं, हाँ, हल्के होने की वजह से वो ऊपर उठते हैं। उनकी खाली हुई जगह को भरने के लिए ऊपर के ठंडे और भारी कण नीचे आते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं।
अच्छा, एक साइकिल जैसा बन जाता है।
बिल्कुल, ये ऊपर नीचे आने जाने का एक चक्र बन जाता है जिसे कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। इसी से पूरा तरल या गैस धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यहाँ बात कणों की वास्तविक गति, एक्चुअल मूवमेंट की है।
पानी उबालते समय शायद यही होता होगा, पानी नीचे से गर्म होता है, ऊपर आता है।
बिल्कुल, पाठ्यपुस्तक में एक प्रयोग का जिक्र है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल होता है।
हाँ, मैंने पढ़ा।
अगर आप एक फ्लास्क में पानी लेकर उसमें नीचे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा क्रिस्टल डालें और फिर फ्लास्क को नीचे से गर्म करें तो आपको रंगीन पानी की धाराएं नीचे से ऊपर उठती और फिर किनारों से ठंडी होकर नीचे आती साफ दिखाई देंगी।
अच्छा, वो धाराएं दिखती हैं।
हाँ, वो कन्वेक्शन करंट्स हैं। इसीलिए पानी या किसी भी तरल को गर्म करने के लिए बर्तन को नीचे से ही गर्म किया जाता है।
ठीक है, और कमरे को गर्म करने वाला हीटर भी शायद इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसे आमतौर पर फर्श पर ही रखा जाता है।
हाँ बिल्कुल, हीटर के पास की हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर उठती है। छत की तरफ से ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और हीटर से गर्म होकर फिर ऊपर जाती है।
तो पूरे कमरे में हवा घूमने लगती है।
हाँ, इस तरह पूरे कमरे में हवा का चक्र कन्वेक्शन करंट्स बन जाता है और कमरा गर्म हो जाता है।
और वो समुद्र किनारे चलने वाली हवाओं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का भी जिक्र है, क्या वो भी कन्वेक्शन का ही नतीजा है?
हाँ, वो प्रकृति में कन्वेक्शन का बहुत ही शानदार उदाहरण है।
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे होता है ये?
दिन के समय जमीन समुद्र के पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है।
हाँ, रेत जल्दी गर्म होती है।
बिल्कुल, इसलिए जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा जमीन की तरफ बहने लगती है। इसे सी ब्रीज कहते हैं।
अच्छा, दिन में समुद्र से जमीन की तरफ।
हाँ, और रात में इसका उल्टा हो जाता होगा।
कैसे?
रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है।
हाँ?
जबकि समुद्र का पानी अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ता है तो वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है।
अच्छा, पानी देर से ठंडा होता है।
हाँ, अब समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और जमीन की ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए समुद्र की तरफ बहती है। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं।
जमीन से समुद्र की तरफ, वाह।
सोचिए, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम एयर कंडीशनर्स को कमरे में ऊपर लगा के करते हैं।
हाँ, एसी ऊपर ही लगता है।
ताकि ठंडी हवा भारी होकर नीचे आए और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाए और फिर ठंडी हो। हीटर नीचे, एसी ऊपर, कन्वेक्शन का कमाल है।
कमाल है। अच्छा, तो कंडक्शन के लिए सीधा संपर्क चाहिए, कन्वेक्शन के लिए तरल या गैस का माध्यम जिसमें कण चल सकें। लेकिन सूरज से हम तक गर्मी कैसे पहुंचती है? सूरज और पृथ्वी के बीच तो अरबों किलोमीटर का फासला है और ज्यादातर तो खाली जगह यानी वैक्यूम है। वहां तो कोई माध्यम ही नहीं है, ना ठोस, ना तरल, ना गैस।
विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है और इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती।
माध्यम नहीं चाहिए?
नहीं, ये वैक्यूम में भी सफर कर सकती हैं। सूरज की गर्मी हम तक इसी रेडिएशन के जरिए पहुंचती है।
अच्छा,
सिर्फ सूरज ही नहीं, हर गर्म वस्तु रेडिएशन छोड़ती है, जैसे जलता हुआ कोयला या हीटर के पास बैठने पर जो सीधी गर्मी महसूस होती है वो भी ज्यादातर रेडिएशन से ही आती है। इसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन का रोल कम होता है।
आग के सामने बैठते हैं तो सीधी गर्मी लगती है। हाँ, तो ये रेडिएशन जब किसी चीज से टकराती है तब क्या होता है?
जब रेडिएशन किसी सतह पर पड़ती है तो उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। कुछ हिस्सा आर पार जा सकता है, ट्रांसमिशन, कुछ सतह से टकराकर वापस लौट सकता है, रिफ्लेक्शन, और कुछ सतह द्वारा सोख लिया जा सकता है,
एब्जॉर्ब करना।
हाँ, एब्जॉर्प्शन। जो हिस्सा सोख लिया जाता है वही उस वस्तु को गर्म करता है। अब कोई सतह कितना सोखेगी और कितना वापस भेजेगी ये उस सतह के रंग और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है।
रंग पर कैसे? मतलब काला रंग, सफेद रंग?
बिल्कुल, गहरे रंग, खासकर काला रंग और खुरदरी सतहें ज्यादा रेडिएशन सोखती हैं।
अच्छा, काला रंग गर्मी सोखता है,
जबकि हल्के रंग, खासकर सफेद रंग और चमकदार या चिकनी सतहें ज्यादातर रेडिएशन को वापस भेज देती हैं।
अरे हाँ, इसीलिए तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के, खासकर सफेद सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है।
हाँ,
वो सूरज की ज्यादातर गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होती है।
बिल्कुल सही पकड़ा।
और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करके हमें गर्म रखते हैं।
बिल्कुल, ये रेडिएशन के अब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा इस्तेमाल है। घरों की बाहरी दीवारों को हल्का रंगने से भी गर्मियों में घर ठंडे रहते हैं।
सही बात है। हमने ऊष्मा के सफर के तीनों रास्ते समझ लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब एक सवाल उठता है, क्या हम ऊष्मा के इस आने जाने को रोक सकते हैं या कम से कम धीमा कर सकते हैं? जैसे थर्मस फ्लास्क में चाय या कॉफी काफी देर तक गर्म रहती है, या ठंडा पानी ठंडा, वो ये कैसे कर पाता है?
हाँ, थर्मस फ्लास्क, जिसे वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं, इसी काम के लिए बनाया गया है। उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो ऊष्मा के स्थानांतरण के तीनों तरीकों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को काफी हद तक रोक देती है।
तीनों तरीकों को? उसकी बनावट में ऐसा क्या खास होता है?
थर्मस फ्लास्क में कांच की बनी एक दोहरी दीवार वाली बोतल होती है, मतलब एक बोतल के अंदर एक और बोतल,
डबल वॉल।
हाँ, डबल वॉल्ड ग्लास बोतल, और उनकी बीच की जगह से हवा निकालकर लगभग वैक्यूम, निर्वात बना दिया जाता है और उसे सील कर दिया जाता है।
बीच में हवा नहीं होती?
नहीं, या बहुत ही कम वैक्यूम। कांच की इन दीवारों के अंदरूनी सतहों को चांदी की तरह चमकदार, सिल्वर्ड बना दिया जाता है।
चमकदार क्यों?
अभी बताता हूँ। बॉटल का मुंह एक ढक्कन से बंद रहता है, जो आमतौर पर कॉर्क या प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर का बना होता है, और इस पूरी बॉटल को एक बाहरी केस में रखा जाता है।
अच्छा, इतनी सारी चीजें, तो ये सब मिलकर ऊष्मा को अंदर या बाहर जाने से कैसे रोकते हैं?
देखिए, कांच और ढक्कन दोनों ही ऊष्मा के पुअर कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, तो वो कंडक्शन के जरिए गर्मी को आसानी से अंदर बाहर नहीं जाने देते।
ठीक है, कंडक्शन कम हो गया।
दोनों दीवारों के बीच जो वैक्यूम है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को ही रोक देता है।
कैसे?
क्योंकि इन दोनों तरीकों के लिए कणों माध्यम की जरूरत होती है, और वैक्यूम में तो कण होते ही नहीं, या ना के बराबर होते हैं, तो गर्मी ना कंडक्ट हो सकती है ना कन्वेक्ट।
सही है, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं।
और वो चमकदार सतह?
हाँ,
वो चमकदार चांदी जैसी सतह है, रेडिएशन को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है।
अच्छा, जैसे सफेद रंग करता है?
हाँ, उससे भी बेहतर। तो अंदर की गर्म चीज से निकलने वाली रेडिएशन वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती, और बाहर की गर्मी रेडिएशन से अंदर नहीं आ पाती, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है।
कमाल है, तीनों तरीके ब्लॉक हो गए लगभग।
हाँ, इस तरह तीनों तरीकों से ऊष्मा का आदान प्रदान बहुत कम हो जाता है, और अंदर रखी चीज का तापमान काफी देर तक लगभग वैसा ही बना रहता है।
कमाल है। संक्षेप में हमने आज ऊष्मा के बारे में काफी कुछ जाना। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, तापमान उसकी माप है।
बिल्कुल।
तापमान मापने के लिए क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं, डिजिटल भी हैं।
हाँ।
तीन तरीकों से चलती है, कंडक्शन,
ठोस में संपर्क से,
कन्वेक्शन,
तरल और गैस में कणों की गति से,
और रेडिएशन,
बिना माध्यम के तरंगों से।
हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और थर्मस फ्लास्क के पीछे का विज्ञान भी समझा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या टेक अवे है?
निचोड़ यही है कि ऊष्मा का ये खेल हमारे चारों तरफ लगातार चल रहा है, और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।
हर पहलू को?
हाँ, चाहे मौसम का बदलना हो, खाना पकाना हो, कपड़े पहनना हो, या घरों को आरामदायक बनाना हो, हर जगह ऊष्मा के स्थानांतरण के ये सिद्धांत काम कर रहे हैं।
सही बात है।
इन्हें समझने से हम ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं।
ठीक है,
ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में।
क्या?
हमने देखा कि कैसे अलग अलग पदार्थ ऊष्मा के साथ अलग तरह से पेश आते हैं। कोई आसानी से जाने देता है, कोई रोकता है, कोई सोखता है, कोई वापस भेजता है।
हाँ?
जरा सोचिए, उन जगहों के लिए जहां तापमान बहुत चरम पर होता है, जैसे एक अंतरिक्ष यान जो सूरज की सीधी गर्मी और अंतरिक्ष की बेघट ठंड दोनों झेलता है।
हाँ, अंतरिक्ष में तो बहुत एक्सट्रीम होता होगा।
या गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी, जहां बाहर बहुत ठंडा और दबाव ज्यादा होता है, वहां अंदर सही तापमान बनाए रखने के लिए इंजीनियर कितनी सूझबूझ से सही पदार्थों का चुनाव करते होंगे। कैसे वो तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कंट्रोल करते होंगे।
बड़ा चैलेंज होता होगा।
और एक बात और, हम इंसान और दूसरे जीव जंतु अपने शरीर का तापमान लगभग एक जैसा बनाए रखने के लिए इन्हीं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के सिद्धांतों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अनजाने में ही सही।
हाँ, जैसे सर्दियों में रोंगटे खड़े हो जाना या गर्मियों में पसीना आना, शायद ये भी इसी से जुड़ा है।
बिल्कुल, ये सोचने वाली बातें हैं।
वाकई सोचने के लिए बहुत दिलचस्प सवाल हैं ये। उम्मीद है ऊष्मा पर हुई इस बातचीत से आपको इस विषय को समझने में मदद मिली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा।
उम्मीद तो यही है।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सोचते रहिए।
नमस्कार।
नमस्कार।